हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त जगत चंदौली
और मैं प्रेमा नेगी
और हम हाजिर हैं आपके लिए आपके अपने कार्यक्रम के साथ
जिसमें होती है आपके लिए ढेर सारी जानकारी
और बहुत सारा मनोरंजन। जी हां दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने कार्यक्रम नई दिशा में। प्रेमा, कभी कभी इंसान बड़ी अजीब सी कश्मकश में फंस जाता है, समझ नहीं आता कि क्या करे।
कश्मकश? कैसी कश्मकश जगत?
अब देखो ना, ये कश्मकश नहीं तो और क्या है कि एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति, चाहे फिर वो आदमी हो या औरत, ये फैसला नहीं कर पाता कि उसे अपने HIV पॉजिटिव होने के बाद अपने जीवन साथी को बतानी चाहिए या नहीं।
सही कहते हो जगत, लेकिन मुझे लगता है ऐसे वक्त में हिम्मत से काम लेने की जरूरत है और साथ ही साथ ये ध्यान रखने की भी कि अब सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की खुद की जिंदगी से नहीं जुड़ा है, बल्कि सवाल उस व्यक्ति के जीवन साथी की जिंदगी का भी है जो HIV पॉजिटिव है।
बिल्कुल।
तो ऐसे में मुझे लगता है कि पति हो या पत्नी, दोनों को एक दूसरे के साथ वफादारी बरतनी चाहिए और अपने HIV पॉजिटिव होने की बात अपने जीवन साथी को जरूर बता देनी चाहिए।
दोस्तों, लोगों की नासमझी और नादानी का ही परिणाम है कि HIV पॉजिटिव लोगों के आंकड़ों में दिन ब दिन वृद्धि हो रही है।
सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बहुत सारे HIV पॉजिटिव लोग हैं और आज हम रोशनी डालने वाले हैं उन आंकड़ों पर।
तो आइए दोस्तों, इसके लिए आपको लिए चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट जानो अनजाने की तरफ। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि दुनिया में कौन कौन सी जगहों पर HIV के साथ जी रहे लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है और ये संख्या कहां तक पहुंच गई है।
जी हां दोस्तों, UNAIDS के 2007 तक के आंकड़ों के अनुसार विश्व में 33 मिलियन लोग HIV संक्रमण के साथ जी रहे हैं।
और दोस्तों, हर साल लगभग 2.7 मिलियन नए लोग HIV संक्रमण से ग्रसित हो रहे हैं, जिनमें से आधे 25 साल से कम उम्र के हैं और सिर्फ 40% युवाओं को HIV की पूरी और सही जानकारी है।
और UNAIDS की 2008 की रिपोर्ट के अनुसार सब सहारन अफ्रीका में लगभग 15-28% जनसंख्या HIV से ग्रसित है। साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में 1% से कम जनसंख्या HIV की ग्रस्त में है, मगर साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देशों में HIV संक्रमण 1% जनसंख्या से अधिक भी है।
दोस्तों, आपकी जरा सी लापरवाही जिंदगी के साथ खेल खेलने के समान हो सकती है। आप सबसे यही अनुरोध है दोस्तों कि HIV/AIDS के बारे में पूरी और सही जानकारी रखें और सुरक्षा का ध्यान भी। Take a chance, प्यार में, ये मेरे बस की बात नहीं। Take a chance, प्यार में, ये कल को देगा साथ नहीं। सर सर कल को तू पी ले और मर के तू जी ले। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है आप सभी का भेजा फ्राई करने का।
तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का जवाब। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन से लक्षण हैं जो HIV संक्रमित व्यक्ति को आम तौर पे होते हैं।
और दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन A, यानी कि आम बीमारियों का बार बार होना और मुश्किल से ठीक होना। और दोस्तों, ये सही जवाब देकर एपिसोड 23 के हमारे आज के विजेता बन गए हैं पवन शर्मा रोहतक से। आपको ये मस्त भेजा फ्राई कैप बहुत बहुत मुबारक हो। और दोस्तों, अगर आप भी ये भेजा फ्राई कैप जीतना चाहते हैं तो एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब देते रहिए।
और दोस्तों, अब हमारा आज का सवाल।
और आज का सवाल है, सबसे पहले कॉन्डोम किस चीज का बना था। अपना सवाल एक बार फिर से सुनिए, सबसे पहले कॉन्डोम किस चीज का बना था। और आपके ऑप्शंस हैं ए मछली खाल, बी रबड़, सी कपड़ा और भेड़ों की आंत, और डी घोड़े की खाल। अपने ऑप्शंस फिर से सुनिए, ए मछली खाल, बी रबड़, सी कपड़ा और भेड़ों की आंत, और डी घोड़े की खाल।
दोस्तों सवाल तो आपने सुन लिया होगा, तो फटाफट अपना मोबाइल फोन उठाइए, टाइप कीजिए ND28 भेजा फ्राई स्पेस और अपना जवाब ए बी सी या डी और लिखकर भेज दीजिए 9717678223 पर, यानी 9717678223 पर। और अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट आमने सामने का।
नमस्कार अमन चावला जी, आमने सामने में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना छोटा सा परिचय दीजिए।
मेरा नाम है रमन चावला, मैं एक संस्था से हूँ, लॉयर्स कलेक्टिव HIV एड्स यूनिट। हमारी जो संस्था है वो HIV पॉजिटिव लोगों के लिए काम करती है, हम इन सबको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनके लिए केसेस लड़ते हैं।
अच्छा रमन जी, लोगों के HIV स्टेटस को गोपनीय बनाए रखना क्यों जरूरी है?
जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में कितना भेदभाव है HIV पॉजिटिव लोगों के खिलाफ। अक्सर अस्पतालों में लोगों की गोपनीयता भंग करी जाती है और फिर उससे उनके खिलाफ भेदभाव होता है समाज में। अब इसी तरह अगर अस्पताल गोपनीयता भंग करते रहेंगे तो अक्सर जो ऐसी कम्युनिटीज हैं, ऐसे जो लोग हैं जिनको HIV पॉजिटिव होने का खतरा है, वो अस्पताल नहीं जाएंगे, अपना HIV टेस्ट नहीं कराएंगे। अगर अपना HIV टेस्ट नहीं कराएंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो HIV पॉजिटिव हो सकते हैं, वो कभी सामने ही नहीं आएंगे। बीमारी एक तरीके से अंडरग्राउंड चली जाएगी या फिर गुप्त हो जाएगी, और एक बार अगर बीमारी गुप्त हो जाएगी तो फिर उसको फैलने से रोकना बहुत मुश्किल है।
रमन जी, सबसे ज्यादा गोपनीयता के अधिकारों का उल्लंघन कहाँ और किस परिस्थिति में होता है?
हमने अपने लॉयर्स कलेक्टिव में देखा है कि सबसे ज्यादा लोगों की गोपनीयता भंग अस्पतालों में की जाती है, और मैंने ये देखा है कि बड़े बड़े चाहे सरकारी अस्पताल हों या प्राइवेट अस्पताल में हो, हमारे देश में हर जगह लोगों की गोपनीयता भंग करी जाती है। इसलिए कई सारे HIV पॉजिटिव लोग या फिर जैसे कि मैंने पहले कहा, ऐसे लोग जिनको HIV होने का खतरा है, वो अस्पतालों में जाने से कतराते हैं।
अगर HIV व्यक्ति की गोपनीयता को भंग किया जाता है तो कैसे परिणाम सामने आ सकते हैं?
हमने अक्सर देखा है कि जब लोगों की गोपनीयता भंग करी जाती है, उनको अलग अलग तरीके के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अक्सर जब पता लगता है कि इंसान HIV पॉजिटिव है तो उनका अस्पताल इलाज करने से मना कर देते हैं, बच्चों को स्कूल से निकाल देते हैं, नौकरी से लोगों को निकाल देते हैं। तो एक बार जब लोगों की गोपनीयता भंग हो जाती है तो हमारे समाज में लोगों को अलग अलग तरीके के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, अक्सर भेदभाव परिवार में भी होता है। जब परिवार वालों को पता लगता है कि उनके परिवार में कोई HIV पॉजिटिव है तो घर से ही निकाल देते हैं या फिर ठीक से उनके साथ व्यवहार नहीं करते, तो गोपनीयता भंग होने की वजह से अलग अलग तरीके के भेदभावों का सामना करना पड़ता है।
और HIV पॉजिटिव स्टेटस को गोपनीय रखने का अधिकार क्या कानूनी तौर पर लागू है?
ऐसा कोई संसद के द्वारा बनाया गया कानून तो हमारे देश में नहीं है गोपनीयता के ऊपर, लेकिन हमारे संविधान में आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है, उसको इंटरप्रेट करा है कोर्ट्स ने। तो हमारा संविधान में एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है जीने का अधिकार, और काफी सारे कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया है और कहा है कि जो गोपनीयता का अधिकार है वो जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है।
अच्छा रमन जी, आपके हमारे श्रोताओं के लिए क्या सुझाव है?
मैं श्रोताओं को यही कहना चाहूंगा कि प्लीज, अगर आपको पता है कि कोई इंसान HIV पॉजिटिव है तो उसकी गोपनीयता बना के रखें, उसकी सहमति के बिना, उससे पूछे बिना किसी और को ना बताएं कि वो HIV पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप किसी और को बताएंगे, उसकी गोपनीयता भंग करेंगे तो उसे अलग अलग तरीके के भेदभाव का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत मुश्किलें हो जाएंगी।
रमन चावला जी, आपका यहाँ आने के लिए और हमारे श्रोताओं के साथ ये तमाम जानकारी बांटने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
हाँ तो प्रेमा, अब क्या किया जाए?
बात
हाँ,
हमारे श्रोताओं से बात। अरे मैं आपकी बात के बारे में बात कर रही हूँ, आखिर श्रोताओं द्वारा भेजे जाने वाले खत हमसे बातचीत करने का ही तो एक जरिया है।
हाँ सही कहा तुमने, और फिर हम उन खतों का जवाब देना कैसे भूल सकते हैं भला।
तो दोस्तों शुरू करते हैं आपकी बात।
तो दोस्तों आपकी बात में हमारा पहला सवाल है राजन तिवारी का, जो कानपुर से हमें खत लिख रहे हैं और ये पूछते हैं कि HIV क्या केवल मानव जाति को होता है, पशु पक्षियों को नहीं होता क्या? वो तो कई के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो राजन जी, सबसे पहले हम आपको बता दें कि मनुष्यों और पशुओं की बीमारियां अलग अलग होती हैं। एचआईवी केवल मनुष्यों के शरीर में ही जीवित रह सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जानवरों में इस तरह के और वायरस हों, मगर हाँ एक बात पक्की है कि एचआईवी केवल मनुष्यों को ही होता है।
और हमारा दूसरा सवाल है निदिशा जी का, जो पूछ रही हैं कि क्या हम एचआईवी का पता करने के लिए टेस्ट करवा सकते हैं। निदिशा जी, एचआईवी का टेस्ट आप बिल्कुल करवा सकते हैं और आपको करवाना भी चाहिए। अपने क्षेत्र के नजदीकी आईसीटीसी सेंटर का पता लगाएं, जो आपके नजदीक के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हो सकता है। वहाँ टेस्टिंग सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध होंगी। एचआईवी की जांच करवाकर आप अपने एचआईवी स्टेटस का पता लगा सकते हैं। और एचआईवी स्टेटस का पता लगाने के लिए हमें टेस्ट करवाना भी चाहिए, जो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में होता है।
तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी एचआईवी के संबंध में कोई सवाल है या फिर आप उससे जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमसे अपना सवाल बिना किसी झिझक के पूछ सकते हैं।
इसके अलावा अगर कार्यक्रम के संबंध में आप कोई राय अथवा सुझाव हमें भेजना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें चिट्ठी व ईमेल के जरिए भेज सकते हैं।
हमारा पता है, कार्यक्रम नई दिशा, 177 बेसमेंट, अशोका इनक्लेव 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद 121003, हरियाणा।
और हमारा ईमेल एड्रेस है नई दिशा NAYEEDISHAA@gmail.com।
और दोस्तों, अब हम पहुँचे हैं उस पड़ाव पर जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे रेडियो धारावाहिक जीवन की राह की। पिछले हफ्ते के एपिसोड में आपने सुना, पिंटो, अजीत और सिद्धार्थ तीनों एक साथ नशा करते हैं। उधर मुंबई में जयपाल गांव के लिए निकलने की तैयारी कर चुका है। गांव के स्कूल में बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन मोहित का ध्यान परीक्षा की तैयारियों में ना होने की वजह से उसकी परीक्षा अच्छी नहीं जा रही है।
इधर शीला और राजन में एचआईवी की वजह से झगड़े हो रहे हैं, यहाँ तक शीला घर छोड़कर जाने तक के लिए तैयार हो जाती है। आइए अब सुनते हैं आगे की कहानी।
ए पिंटो,
क्या है अजीत भाई?
यार ये जगह कुछ अजीब सी नहीं लग रही?
हाँ, अपना कमरा तो नहीं लगता ये।
और ये तुम्हारा कमरा है भी नहीं, क्योंकि इस वक्त तुम दोनों जेल में हो।
जेल? सिद्धार्थ और हम यहाँ?
पहली बात, ये सिद्धार्थ नहीं है।
इंस्पेक्टर आप?
और ये हैं सब इंस्पेक्टर सिद्धार्थ दीक्षित।
क्या?
और दूसरी बात रही तुम्हारे यहाँ आने की, तो जब तुम किसी बेगुनाह को कत्ल के झूठे इल्जाम में फंसाने के लिए जाल बिछा सकते हो, तो पुलिस भी असली कातिल तक पहुँचने के लिए कोई भी खेल खेल सकती है।
और मैं जानबूझकर ही तुम्हारे कमरे में अपना रूम नंबर पूछने आया था, ताकि तुम्हें लगे कि तुम्हें तुम्हारा नया शिकार मिल गया। लेकिन अफसोस, इस बार जाल मेरा था और शिकार तुम दोनों।
ये नहीं हो सकता। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वार्डन का कत्ल मैंने किया है?
सबूत? जरा ये सुनो।
उस रात बेचारा वार्डन खामखा मेरे हाथों मारा गया। ना वो मुझे नशे का सामान लाते हुए देखता और ना ही वो मारा जाता। और मैं सोच रहा था कि अब इस कत्ल का इल्जाम किस पर डाला जाए।
उसमें फंसा बेचारा विनोद। मैंने बड़ी होशियारी से वार्डन का पर्स विनोद के कमरे में लाकर रख दिया और उसे शक भी नहीं होने दिया कि वो पर्स मैंने लाकर उसके कमरे में रखा था। वो बेचारा तो अभी तक यही सोचता है कि जब वार्डन से पैसों को लेकर उसका झगड़ा हुआ था, तो वो उस पर्स को वार्डन से छीन लाया था।
और बड़ी सफाई से हमने कत्ल का इल्जाम विनोद पर डाल दिया।
नहीं, तुम ये सब कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो? तुम भी तो हमारे साथ नशे में थे।
जो इंजेक्शन मैंने तुम्हारे सामने लिया था, दरअसल वो नशे का नहीं, विटामिन का इंजेक्शन था।
वेल डन सिद्धार्थ, तुमने बहुत अच्छे ढंग से अपने काम को अंजाम दिया।
थैंक यू सर।
यार सूरज, अगर तू भी मेरे साथ गांव चलता तो मेरा हौसला बना रहता।
मैं जरूर तेरे साथ चलता जयपाल, लेकिन क्या करूं, तो जानता ही है कि टैक्सी स्टैंड का मालिक बाहर घूमने गया हुआ है और सब कुछ मेरे भरोसे पर छोड़कर गया है। ऐसे में तू समझ सकता है कि मेरा निकलना कितना मुश्किल है यार।
हाँ ठीक कह रहे थे।
देख, लक्ष्मी को अपने बारे में सब कुछ बता देना।
यार लक्ष्मी तक तो ठीक है, लेकिन अगर गाँव में किसी को पता चल गया तो?
अरे यार, जब तू किसी को बताएगा ही नहीं तो भला किसी को पता कैसे चलेगा। और देख, जहाँ तक मेरी बात है तो मैं ये बात धनवंती तक को नहीं बताऊंगा। सौ बातों की एक बात जयपाल, इस बात को राज रखना तेरा अधिकार है, समझ गया?
हाँ ठीक है।
अच्छा पहुँचते ही फोन करना और अपना ख्याल रखना।
हाँ ठीक है। अच्छा एक बार गांव आने की कोशिश करना।
हाँ हाँ, मौका मिलते ही आऊंगा।
मैंने आप पर हमेशा भरोसा किया है और अब भी करती हूँ, मगर एचआईवी ये हमारी जिंदगी में कहीं से तो आया है ना।
मैं भी बस यही सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी इस बात का यकीन करो कि मेरा किसी और के साथ कोई संबंध नहीं है और ना ही मैं कोई नशा करता हूँ।
तो फिर
तुम्हें याद है शीला, जब मेरा और सुमन की माँ का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त मुझे खून चढ़ाया गया था?
हाँ।
शायद उस वक्त जो खून मुझे चढ़ाया गया उसे ठीक से जांचा नहीं गया होगा और वो खून एचआईवी से संक्रमित होगा। शीला, अगर मैं एचआईवी पॉजिटिव हुआ तो उसकी बस यही एक वजह हो सकती है।
लेकिन अब हमारे इस आने वाले बच्चे का क्या? इसे आखिर किस गुनाह की सजा मिल रही है?
कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा शीला। मैंने सुना है कि आजकल कुछ ऐसी दवाइयां आई हैं जिनसे माँ से बच्चे को एचआईवी होने का खतरा कम रहता है।
तो कल हमें सबसे पहले डॉक्टर से जाकर मिलना होगा।
कल हम डॉक्टर से जाकर मिलेंगे।
हेलो।
हाँ प्रधान जी।
जी
प्रधान जी, मैं इंस्पेक्टर गुप्ता बोल रहा हूँ दिल्ली से। वो विनोद के केस के बारे में आपसे बात करनी थी।
जी कहिए सर।
आपको जानकर खुशी होगी, आपके बेटे पर लगे हुए सारे इल्जाम हट गए हैं।
क्या?
और असली मुजरिम पकड़ा गया।
आप सच कह रहे हैं ना इंस्पेक्टर साहब?
बिल्कुल सर।
धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब, धन्यवाद।
धन्यवाद किस बात?
अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको पता नहीं है आपने ये खबर सुनाकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं जानता था मेरा बेटा मुजरिम नहीं है।
जी चलिए अब मैं फोन रखता हूँ।
जी नमस्ते। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये खबर सबसे पहले किसको सुनाऊं? सरिता, सरिता।
क्या बात है?
सरिता, अभी अभी इंस्पेक्टर साहब का फोन आया था, वो कह रहे थे कि हमारा विनोद बेकसूर है।
मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मेरा बेटा भटक जरूर गया उस बड़े शहर में जाकर, मगर वो किसी की जान ले ले ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
हाँ सरिता, पुलिस ने असली कातिल को पकड़ लिया है और उसके खिलाफ सबूत भी मिल गए हैं।
तो अब हमारा विनोद घर कब आ जाएगा?
अभी नहीं सरिता।
क्यों? अब तो पुलिस ने भी उसे निर्दोष करार दे दिया है।
लेकिन सरिता, उसे कुछ दिन नशा मुक्ति केंद्र में ही रहने देना होगा ताकि वो अपने नशे की लत से आजाद हो सके। लेकिन सरिता, आज नहीं तो कल अब हमारा बेटा घर आ ही जाएगा।
सचमुच जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली।
ला 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 ला। दिखता है। अरे आगे इतना जाम क्यों है? हाँ चल भाई सूरज, टैक्सी रोक और उतर कर देख आखिर माजरा क्या है।
अरे भाई साहब, ए भाई साहब, ये आगे इतना जाम क्यों है?
आगे किसी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है।
क्या है एक्सीडेंट? अरे भाई हटो, अरे भाई हटो ना, देख लो तो हुआ क्या है वहाँ। हटो हटो, सही हटिए हटिए भाई साहब हटिए। इसका तो बहुत खून बह रहा है। अरे भाई तुम सब लोग यहाँ खड़े खड़े इनका मुंह क्या देख रहे हो? इन्हें उठाओ और लेकर हॉस्पिटल चलो।
भाई साहब ऐसे कैसे ले जाए, अपन तो जानते भी नहीं कि ये कौन है।
भाई नहीं जानते तो क्या हुआ, इंसानियत भी तो कोई चीज है कि नहीं है? इन्हें कम से कम हम हॉस्पिटल तो लेकर जा ही सकते हैं।
मेरे को नहीं मालूम, तेरे को ले जाने का है तो लेकर जा।
अच्छा अच्छा मैं ही लेकर जाता हूँ, कम से कम आप सब लोग मेरी मदद तो कर सकते हैं इन्हें उठाकर टैक्सी में रखने में। आइए।
अरे आइए, मेहरबानी कीजिए। अरे चला चला यहाँ आओ। अरे मदद करो भैया, चल दिया।
हाँ
जगत, जगत।
हा?
क्या हो गया, कहाँ खो गए तुम?
प्रेमा, मैं हमारे पिछले हफ्ते के प्रोग्राम के बारे में सोच रहा हूँ।
लेकिन क्या सोच रहे थे?
याद है तुम्हें,
हमने क्या किया जाए में पूछा था कि क्या शादी से पहले HIV टेस्ट करवाना चाहिए।
हाँ,
मगर मैं एक बात दोहरा देना चाहता हूँ कि ये टेस्ट हर व्यक्ति अपना खुद के लिए करवाए, और वो भी अपनी स्वेच्छा से। किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो किसी और को HIV टेस्ट करवाने के लिए बाध्य करे, यानी मजबूर करे।
बिल्कुल सही कहा जगत तुमने। शादी से पहले अपना खुद का HIV टेस्ट स्वेच्छा से करवाना अच्छा होगा, ताकि आप ये जान लें कि आप अनजाने में किसी और की जिंदगी खतरे में तो नहीं डाल रहे हैं। और दोस्तों, आज क्या किया जाए में हमने अपने श्रोताओं से पूछा है कि अगर पति पत्नी में कोई एक HIV पॉजिटिव हो जाता है तो ऐसे में पति या पत्नी को क्या करना चाहिए।
उसका मेडिकल चेकअप करवाएंगे और जो डॉक्टरों की सलाह है लेते रहेंगे और उसका इलाज करवाएंगे जहाँ तक हो सके।
अगर हमको पता चलता है कि हमारे पति HIV पॉजिटिव हैं, तो हम उन्हें पौष्टिक आहार खाने के लिए कहेंगे और सुरक्षा के बारे में बताएंगे और कॉन्डम का इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे।
सबसे पहले मैं HIV पॉजिटिव की जो भी सुरक्षा उपाय हैं जिससे संक्रमण फैले ना, उस पर विचार करूंगा, और मैं अपनी पत्नी से सामान्य व्यवहार बनाए रखूंगा जिससे उन्हें ये आभास न हो कि उन्हें HIV पॉजिटिव है।
अगर मेरे पति HIV पॉजिटिव होंगे तो सबसे पहले मैं उन्हें ये फील नहीं होने दूंगी कि वो HIV पॉजिटिव है, यानी कि मैं उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूंगी, मतलब उनका ऐसा साथ दूंगी, उनके हर कामों में साथ दूंगी और हर काम संयम के साथ करूंगी।
और दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले हम अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहेंगे जिनके वित्तीय सहयोग से कार्यक्रम नई दिशा आइडियो सिंक मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
और साथ ही साथ हम अपने सहयोगियों हैवलवानी, मंदाकिनी की आवाज, सामुदायिक रेडियो और सभी सामूहिक संवाददाताओं का भी धन्यवाद करते हैं।
और हाँ दोस्तों, सवाल का जवाब SMS करना ना भूलें। चाहें तो आप हमारा नंबर एक बार फिर नोट कर सकते हैं।
नंबर है 9717678223, यानी कि 9717678223।
और दोस्तों, अब मुझे और प्रेमा को दीजिए इजाजत। हमारी और आपकी अगले हफ्ते इसी समय फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।